Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम अकेले नहीं हैं। अगर हमारे मन में ये विश्वास है कि भगवान हमारा साथी है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कभी भी अकेले नहीं होंगे और उनकी मदद आपको सदा मिलती रहेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और उनके साथ हैं मोनिका जी। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
डॉक्टर साहब। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से बच्चों के अंदर में एक ऊर्जा होती है जो कि किसी भी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनके अंदर एक अथाह एनर्जी होती है जिसे अगर सही डायरेक्शन में डाल दिया जाए तो वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की ग्रूमिंग में और उनके सक्सेस में। इस पर अगर आप कुछ और बातें हमें बता सके तो बहुत अच्छा होगा।
नेचुरली देखिए, पेरेंट्स के बाद जो सेकेंड उनके लिए पेरेंटल बिहेवियर होता है या पेरेंटल गाइडेंस होती है, उनको स्कूल से मिलती है, उनके टीचर्स के द्वारा मिलती है
जी।
उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एजुकेट करना। लेकिन ये सब्जेक्ट जो हैं, ये केवल ये नहीं कि हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस वगैरह उन्हें पढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी हमको टीच करनी होती है। उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ को रिकग्नाइज करके उनके साथ कनेक्शन डेवलप करना होता है। एक टीचर एक टाइम के अंदर 20-30-40 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है।
करेक्ट।
एंड वो जो 20-30-40 सोल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ईच वन इज़ ऑन अ डिफरेंट जर्नी। हर बच्चे का अलग पार्ट है, अलग हर बच्चे का अलग अंडरस्टैंडिंग है, हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आया हुआ है, हर बच्चे का पेरेंटल गाइडेंस भी बहुत डिफरेंट होगी। कुछ के पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, कुछ के पेरेंट्स हो सकता है इतने अच्छे ना हों। तो जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है, वो डिफरेंट प्रेशर्स और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को इकट्ठे लेके अपने सर पर लेकर क्लास के अंदर आता है।
बिल्कुल।
ये एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छे को अच्छा करना तो टीचर के लिए बहुत आसान है, वो तो आपको करना ही चाहिए कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ावा आप दीजिए, उनको और आगे बढ़ाइए, उनको और गाइडेंस दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दीजिए। लेकिन जो वीक लिंक है, जो वीक स्टूडेंट है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको समझते हुए क्या कारण है कि वो वीक है, कोई पेरेंटल रीजंस हैं, कोई फैमिली रीजंस हैं, या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको उतना डेवलप नहीं किया गया है, वो एक अच्छा टीचर समझकर उसको गाइडेंस देता है, उसके अनुसार उनको पढ़ाता है। ये समझ रखते हुए कि 50 लोगों की क्लास के अंदर फर्स्ट एक ही स्टूडेंट आएगा, लेकिन ये समझना कि फर्स्ट एक ही स्टूडेंट आएगा तो केवल 10 स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाया जाए और बाकी 30 को ना पढ़ाया जाए, ये ठीक नहीं रहता है
जी।
कौन फर्स्ट आएगा, यू नेवर नो, आपको ये पता नहीं होता है। तो ये टैलेंट को समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कार्य टीचर का होता है।
आप देखिए, इसमें जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है, वो जब भी घर जाएगा तो अपनी माँ को सबसे पहले क्या सुनाएगा, आज मेरी टीचर ने मुझे ये कहा, आज मेरी टीचर ने हमको ऐसा करने के लिए कहा। तो टीचर्स तो रोल मॉडल्स हमेशा ही बच्चों के लिए रहे हैं
जी।
बच्चा हमेशा टीचर्स को कॉपी करता है। हम भी जब छोटे थे तो हमें याद है कि छुप करके साड़ी पहनकर टीचर्स की तरह एक्टिंग करते थे कि तुम शरारत नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो हर बच्चे के जीवन में माँ बाप, टीचर्स, ये रोल मॉडल्स होते हैं। और यही रोल मॉडल अगर पॉजिटिव हो, अगर एंथुजियास्टिक हो
जी,
तो बच्चों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का हम यू नो एम्पावर कर सकते हैं, बच्चों को भर सकते हैं थोक के भाव। तो बहुत ज़रूरी है कि एक नेगेटिव बच्चे को भी कैसे पॉजिटिव बना देना। एक बच्चा जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, हम उसके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा कर दें, और कॉन्ट्ररी कोई बच्चा बहुत अच्छा भी है, हम उसको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है बच्चों के भविष्य को आप कहें मोल्ड करने के लिए, शेप करने के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे एक कुम्हार एक घड़े को मोल्ड करता है बड़ी सुंदर तरीके से, वैसे ही ये अध्यापक गण कहें या हमारे पेरेंट्स, हमारे को एक कच्ची मिट्टी को, जैसे बच्चा एक कच्ची मिट्टी के न्यायी है, जिसको आप चाहें जैसा शेपिंग देना चाहें आप कर सकते हैं।
और ये शेपिंग थॉट्स की शेपिंग है।
बिल्कुल।
थॉट्स को आप किस तरह शेप करेंगे, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आप किस तरह शेप करेंगे, वही एक प्रैक्टिकल स्वरूप का रूप ले लेता है।
पर जब हम बात करते हैं बच्चों के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे रेपिटेटिवली वीक रहते हैं। उनके लिए शायद अगर सपोज थर्ड स्टैंडर्ड में एक बच्चा फेल हो जाता है, तो जब वो देखता है कि मेरे आसपास जो बच्चे हैं वो सभी तो मुझसे छोटे हैं अभी, क्योंकि एक साल पीछे हो गए अगर वो फेल हो जाते हैं तो इसमें भी कई बार बहुत कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो ऐसे में टीचर्स का क्या रोल होता है ऐसे किसी बच्चे के प्रति जो कि एक स्टैंडर्ड में फेल हो चुका है?
देखिए, यह एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है
जी,
या टू डील विद दिस सिचुएशन इज वेरी टफ, कि अगर कोई बच्चा रिपीटेडली पुअर परफॉर्म कर रहा है हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी। इम्पॉर्टेंट है ये नोट करना कि हमने प्रॉपर एफर्ट्स दिया है और हम ये समझते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट एम केवल दो फोकस होते हैं उसके अंदर। एक तो ये है कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पास मार्क्स या रीजनेबल मार्क्स दिलवाना, दूसरा उसके अंदर हीन भावना को ना आने देना।
Okay.
और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो किस तरफ उसका इंटरेस्ट डाइवर्सिफाइड है। पढ़ने के सिवाय हो सकता है क्रिएटिविटी के अंदर
जी.
हो सकता है कोई पर्टिकुलर आर्ट्स के अंदर, हो सकता है उसका बिजनेस माइंड हो, क्योंकि आप देखेंगे कई टॉप पीपल जो हैं उनका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता था लेकिन दे हैड अ वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी बैलेंस्ड माइंड, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस यूज़ किया। तो पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी अगर पॉसिबल है तो आपस में बैठकर इसको डिस्कस करना चाहिए, स्टूडेंट के सामने नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के सामने करने से और हीन भावना आती है, बच्चे और बुरा मानते हैं और पेरेंट्स को और बुरा लगता है। उसकी कैपेबिलिटी को समझ के उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए और उसको अप रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, नहीं होता है, आपसे जितना हो सकता है उतना आप पढ़िए, बाकी हम आपको हेल्प करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
जी। डॉक्टर मोहित, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चों की जिन जो इमोशनली काफ़ी वीक होते हैं। ऐसे बच्चे जो अगर छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों का उन्हें फील होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो, तो ऐसे में उन बच्चों को अगर ग्रूम करना चाहते हैं हम, तो पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होगा उसमें?
बच्चों के अंदर जो इमोशनल सेंसिटिविटी आती है
जी,
या जिसको हम लोग कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं सेंसिटिव बिहेवियर आता है, ये बिहेवियर आने के तीन या चार कारण होते हैं और उन तीन या चार कारण में से एक कॉमन कारण होता है जो इमोशनली उनको जेनेटिकली आ रहा है, यानी कोई और सिचुएशंस अराउंड होम और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर परफेक्ट हैं लेकिन वो नेचुरली उनकी हैबिट है कि वो इमोशनल वे पे सिंपथी को गेन करने की कोशिश करते हैं
जी।
दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है घर की हमारी सिचुएशंस, यानी मम्मी या डैडी को आपस में देखते हैं टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, या मम्मी डैडी के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं डेवलप होता, कोई उनकी बात को नहीं समझता है, तो इमोशनली वो लेबाइल हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। और तीसरा होता है कि स्कूल के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस उनको फेस करनी पड़ती है। बेस्ट स्कूल है, बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको दी हुई हैं लेकिन उतना परफॉर्मेंस ना करने के कारण उनको वहाँ पर भी इग्नोर किया जाता है,
एक्सेप्ट
नहीं करते हैं उनको जिस प्रकार से वो हैं। तो इन सब कारणों को इंस्पेक्ट करने के बाद या समझने के बाद बच्चे के ऊपर हमको एक्शन या उसके ऊपर वर्क करना चाहिए
जी।
क्योंकि बच्चे जब इमोशनली वीक होते हैं तो उनको इमोशनल बिहेवियर को सिग्निफिकेंट अमाउंट में मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उनको एम्पावर भी किया जा सकता है, और ये एम्पावरिंग होती है उनके साथ समय बिताकर, उनकी बातों को समझकर, उनको काउंसिल करके, उनकी बातों को पूरा करके, उनको रास्ता बताकर किया जाता है। मम्मी डैडी उनके साथ बैठे हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ बैठे, बच्चों के साथ उनके रोने को कम एक टूल की तरह यूज़ ना करें। कई बार बच्चे रोने को हथियार की तरह यूज करके माता पिता को अपनी बात
मनवा लेते हैं,
जिसको कई बार अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी कहा जाता है। कई बच्चे रो करके या चुपचाप बैठेंगे, कुछ आवाज़ें निकालेंगे, या सडनली सारा क्राउड बैठा हुआ है या सारी फैमिली बैठी हुई है तो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि आपकी उनकी तरफ
बिहेविंग एबनॉर्मली ना
हो। बिहेविंग सो ऐसे में कई बारी कुछ पेरेंट्स बहुत ओवर्टली इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने लगते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को रेपिटेटिवली भी करते हैं। तो हमें आई थिंक कहीं ना कहीं जज करना चाहिए कि बच्चा ऐसा कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। ओवर बढ़ावा भी ना दें लेकिन इग्नोर भी ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, समाधान ज़रूर होगा, जिसको हमें फाइंड करना चाहिए।
ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आप देखें कई बार एक बहुत बड़ी गैदरिंग में हमने भी देखा है
जी।
अपने फैमिलीज में भी या फंक्शंस में हम जाते हैं तो हमने कई बार देखा कि कुछ बड़ी गैदरिंग्स के अंदर भी एक बच्चा जो है पर्टिकुलरली रोने लगेगा, तो माँ बाप वहीं पर ही ओवर्टली उसको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको बाह में ले लेंगे, उसकी हर बात को मानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा जब ये ऑब्जर्व करेगा कि ये मेरी बात मानी जा रही है इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, वो इस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, करता है।
इस पे एक और बात मेरे दिमाग में आई कि मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि एक 17-year-old लड़का, वो अपने पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा देर रह नहीं पाता था क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। तो ऐसे में उसने एक नया तरीका अपना लिया था कि वो बीमार होने की एक्टिंग करता था, और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है बोल करके। एक दिन इतना ज़्यादा वो बात बढ़ गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल तक लेके चले गए थे। एडमिट होने के बाद में उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रख रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसे फ्रूट्स ला करके दे रहे हैं, उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो उस बच्चे को वहाँ पर प्यार महसूस हुआ कि जब वो आए तो उनका हाथ पकड़ करके उसे सहला रहे हैं। तो पहली बार एक तरीके से उसने अपने पेरेंट्स का वो इमोशनल टच भी देखा। तो ऐसे में वो बच्चे को कई बार वो फिर से रिपीटेडली यही चीज़ करने लगा था। कुछ समय बाद उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है। वो बच्चे ने बोला, हाँ ये बात एकदम सही कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें प्यार मिल रहा है, पेरेंट्स का अटेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में छोटे सी नन्ही सी जान की अगर बात करें हम कि उस बच्चे के अंदर में ये जो फीलिंग आई है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है।
देखिए इस प्रॉब्लम के दो पहलू हैं और इसी के अंदर इसका उत्तर छिपा है
जी।
द होल स्टोरी के जो क्रक्स आते हैं, जिसको हम लोग कहें कि प्रॉब्लम क्रिएशन आती है, वो कहाँ पे आई? माता और पिता। बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, उस प्यार उसको तब मिल सकता है जब आप उसे समय देंगे। बच्चे को माता पिता ने समय नहीं दिया
जी।
वो बिजी रहे, बिजी करते रहे, बिजी भी रहे ताकि बच्चे को सुविधाएँ तो दी, लेकिन सुविधाओं से ज़्यादा उनको उसका प्यार चाहिए था और समय चाहिए था। क्योंकि वो नहीं दे पाए तो बच्चे ने उनके प्यार को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मधुमक्खी होती है ना उसको खींचती है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसने उनका समय निकालने की कोशिश की। और समय कब मिले उसे मिला? जब उसने बीमारी का बहाना किया
जी।
तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर, फोर्स्ड एबनॉर्मल बिहेवियर था बच्चे के ऊपर। ये मॉडिफाइबल एबनॉर्मल बिहेवियर था, कंट्रोलेबल एबनॉर्मल बिहेवियर था, क्योंकि अगर माता पिता बच्चे को ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होने देते, थोड़ा समय भी अपने बच्चे को देते, तो बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता। और आप देखें कि शेयर भी उसने किससे किया? माता पिता से नहीं कर पाया, ये शेयर उसने अपने फ्रेंड से किया। प्यार उसे मम्मी डैडी से मिल रहा है, लेकिन शेयर वो अपने फ्रेंड से कर रहा है,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करता है
क्योंकि उसे समय नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल।
लेकिन जब यही प्रॉब्लम एक नॉर्मल बच्चा, जिसको एडिक्वेट प्यार अपने माता पिता से मिलता है, फिर भी वो फॉल्स क्रिएशन के द्वारा, फॉल्स बिहेवियर के द्वारा और अटेंशन उनसे सीख करके, उनसे प्लेजर डिराइव करने की, उनसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने की कोशिश करता है, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एबनॉर्मल होता है बच्चे के पार्ट पे, जिसके लिए साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस सिचुएशन में जिसमें आपने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ही मॉडिफाई कर लेना। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ, एक स्टोरी, बड़ी अच्छी सी बात ध्यान में भी आती है कि एक बारी एक पिता था, बहुत अपने बच्चों को प्यार भी करता था लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। दिन और रात अपने घर के लिए, परिवार के लिए काम करता, बट बच्चे जो थे वो अपने माता पिता की राह देखते, पिता की। तो रात को जब बच्चे सो जाते तो पिता आता था, और जब सवेरे बच्चे उठकर चले जाते थे तो उनके पिता सो रहे होते थे, तो उनका कनेक्शन उनसे नहीं हो पाता था। तो एक दिन रात को उसके पिता थके हुए आए तो अपने पिता के पास बच्चा जाकर बोला कि पापा, आपका एक घंटा जो है, मैं आप कितने पैसे कमाते हो? तो पिता थका हुआ आया था, उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, ये बातें नहीं करते। तो उसने कहा नहीं पापा, मुझे बताइए आप कितना कमाते हो। उसने कहा मैं 1,000 रुपया कमाता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो एक महीने बाद बच्चा फिर अपने पिता के पास आया, जो बहुत बिजी थे। उसने अपने पापा को कहा कि पापा ये मेरी गुल्लक है, इसमें मैंने 1,000 रुपये जमा किए हैं, मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ, आप मुझे अपने जीवन का एक दिन या एक घंटा दोगे जो मैं आपसे आपका खरीदना चाहता हूँ, ताकि आप बैठ के मेरे साथ बात करो, मेरी बातों को सुनो, मैं आपकी बातों को समझो। तो यू सी
हाउ ब्यूटीफुल इज दैट
इमोशनल
एंड हाउ आयरनिकल इट इज।
और हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल किड्स को आप देखेंगे या यूथ्स को भी आप देखेंगे, ये हर बच्चे का, आपका भी, हमारा भी, मोनिका जी का भी एक्सपीरियंस होगा कि पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रोफेशनल रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट।
आई थिंक मच मोर देन आपके मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा वो आपका प्यार, आपका टाइम, आपकी जेन्युइनिटी इज़ व्हाट चिल्ड्रन आर लुकिंग इन फ्रॉम यू।
करेक्ट।
मतलब उनको आपने वॉचेस दे दी, आईपैड्स, आईफोन्स एंड व्हाट नॉट, हम जो भी देना चाहें वो हम सब दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी की तो खैर भरमार है, लेकिन उनको आपसे आपका क्वालिटी टाइम मिल जाता है तो आई थिंक हम उनके जीवन से बहुत सी एलिमेंट्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स बहुत प्यार से हटा सकते हैं।
जी,
ये दोनों साइड पे लाजमी है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी।
जी,
इसको आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें, जैसे मोनिका जी ने आपको बताया कि इन टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड जो है, हमारे पास सब कुछ हाई टेक है, लेकिन हाई टेक से ज़्यादा आज हाई टच की ज़रूरत है। यू नो, ये टच जो होता है ये हमको हील करता है, चाहे हम लोग अपने प्रोफेशनल करियर में भी देखें, पर्सनल लाइफ में भी देखें, कि हमारे पास सब कुछ है टेक्नोलॉजी बेस्ड, लेकिन हम समय और प्यार, यानी आपका जो हीलिंग हैंड होता है, आपका जो वाइब्रेशंस माइंड से निकलती हैं, आपका जो प्यार होता है, माता पिता का प्यार बच्चों के पास जाता है, वो आपको हील करता है, वो आपको डायरेक्शन देता है।
देखिए, ऐसे में जब भी हम कोई बीमारी भी पकड़ लेते हैं तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाती है।
बिल्कुल।
उस समय भी जब काम आता है तो सिर्फ प्यार, स्नेह, सानिध्य, अपनों का सानिध्य, वो ही काम आता है।
बिल्कुल।
तो क्यों ना जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, हम खुशी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुशी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डाल देते हैं, तो ज़रूरी ये है कि खुशी हमारी हमारे अपनों से आती है, हमारे स्वजनों से आती है, तो उनको जितना जितना हम अपने साथ लेकर चलते हैं, टाइम देते हैं, सिर्फ़ एक समय, थोड़ा सा समय, और उस समय में आप देखिए इंसान अपने आप को कितना अनवाइंड कर सकता है। आप बहुत कुछ शेयर करते हैं, आप बच्चों के साथ बहुत से इमोशंस शेयर करते हैं, उनके बहुत सारे इमोशंस निकलते हैं, क्योंकि आप देखिए जीवन में हम कितनी, और हर दिन में हम कितनी सारी सिचुएशंस को पास करते हैं।
बिल्कुल।
जिसमें कहीं स्ट्रेस भी होता है, कहीं किसी का क्रोध भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन जब हम ये फैमिली में आकर के, घर में आकर के, अपने स्वजनों के साथ आकर के शेयर करते हैं, तो ये एक बहुत सुंदर माध्यम है हम सबको ईज आउट करने का।
बिल्कुल। अब मैं एक जानना चाहती हूँ डॉक्टर मोहित, कई बार ऐसा होता है कि आजकल रैगिंग बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है, कुछ बच्चे उसे प्लेजर के लिए करते हैं लेकिन उसके आउटकम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, कुछ बच्चे सुसाइड तक पहुँच जाते हैं अगर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है?
ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में बड़ा स्पष्ट है
जी।
क्योंकि इस फिनोमेना से मैं भी गया हूँ। रैगिंग जो है, ये टर्म बेसिकली रैग करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना नहीं है। आज के ज़माने के अंदर यूथ्स जो हैं, या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ, पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ यूथ जो हैं, वो हर चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। रैगिंग इज़ अ फिनोमेना इन विच वी कम टू नो अबाउट आवर सीनियर्स एज वेल एज आवर जूनियर्स। उस जान पहचान को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, गलत तरीके की एक्टिविटीज़ कराना, गलत तरीके से उनको एजुकेट करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ कराना, वो मेरे ख्याल से गलत होता है
जी।
और मियरली इस टाइप की एक्टिविटीज़ कराना हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है। हमने देखा कि कई लोग इस नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जब खुद सब्जेक्ट किए जाते हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन की मेरे साथ हुआ है तो मैं दूसरे के साथ भी ऐसी चीज़ जरूर करूंगा,
पास ऑन करूंगा,
ये एक्टिविटी गलत हो जाती है। तो इसको बहुत संक्षेप में डील करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि रैगिंग शुड बी अ फिनोमेना इन विच आप एक दूसरे को जाने। अगर आपके पास कोई नया यूथ आया है, अगर आपका कोई नया जूनियर आया है, आप आए हैं, आपके अंडर कोई और जूनियर आया है, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं आपके बारे में जान के आपके क्या टैलेंट्स हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं उनको हम बाहर निकलवाएं। अगर किसी के अंदर सिंगिंग टैलेंट है तो वो गाना गाए सब सीनियर्स के सामने, एक दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करें, वी डेवलप अ कनेक्शन विद ईच अदर। लेकिन उस एक्टिविटी को ह्यूमिलिएट कराना, उनको मारना, उनको हिंसात्मक तरीके से उनको हार्म करना, ये एक्टिविटीज़ भी आजकल बहुत होती हैं। वैसे तो अब सरकार ने और यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कर्ब लगा दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारा मेंटल इम्बैलेंस शो करती हैं। ये क्यों करती हैं? क्योंकि मेंटली जब कोई व्यक्ति संतुलन खो देता है, संतुलन अर्थात घृणा भावना, ईर्ष्या भावना, द्वेष की भावना, हिंसा की भावना, नेगेटिविटी से जब व्यक्ति भरा होता है, तब वो इस नेगेटिविटी फीलिंग को बाहर निकालता है। तो ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस फिनोमेना से खुद गए हैं। हमको जब रैगिंग किया गया, गलत तरीके से भी कई बार किया गया, तो हमने उस समय ये संकल्प लिया, ये नहीं लिया कि मेरे जूनियर्स आएंगे तो मैं उनके साथ करूंगा, मैंने ये संकल्प लिया कि हमें अपने जूनियर्स को एजुकेट करना है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना है, सो दैट दे रिमेंबर मी एज अ वेरी गुड सीनियर। आप किसी को बुरी तरह मार दें, किसी को बहुत बुरी तरह नुकसान करें, और फिर रात को उसके साथ या कुछ समय बाद उसको गले लगा के उसका अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए, लेकिन व्यक्ति कभी भी नेगेटिव चीजों को
भूलता नहीं,
भूलेगा नहीं ना, वो कैसे हो जाएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट इमीडिएटली टू फॉरगिव और फॉरगेट दैट पर्सन। तो वो सिचुएशंस बार बार याद आती रहती हैं। तो इस चीज़ को यहीं पर विराम लगा के हमें ये समझना आवश्यक है कि दीज आर क्रिएशंस ऑफ अ नेगेटिव माइंडसेट, और नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थिंकिंग विल नेवर गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चीज़ कैसे जनरेट कर सकते हो, है ना? आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दो, आपके पास नई ग्रुप आए हैं, उनके टैलेंट को समझो, उनको और बढ़ावा दीजिए। आई थिंक दिस इज़ अ एप्रोप्रिएट टर्म, दिस इज़ व्हाट एक्चुअल रैगिंग इज़ ऑल अबाउट। उनके टैलेंट्स को समझना, उनको गाइड करना, एक अच्छा सीनियर बनके, उनका भाई या उनका बड़ा भाई बनके, या जो भी आप वो बनना चाहें, उनको मार्गदर्शन करना, सो दैट दे आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया के अंदर, जैसे माता पिता की छत्र छाया होती है, उसके अंदर वो ग्रूम करें
जी।
वो आपको, they look up to you as idols.
Idols.
और आपने इसमें बिल्कुल ठीक पूछा था कि कई बारी अक्सर ऐसा जिनके साथ हो भी जाता है तो वो suicidal attempts करते हैं
जी।
या वो इतना frustrate हो जाते हैं कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई। problems, situations बहुत भारी
जी
हर एक के सामने आती हैं
जी,
अपने अपने प्रकार की, पर कहीं ना कहीं जिंदगी हमको choices भी देती है, चॉइसेस टुवर्ड्स नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी।
करेक्ट।
जैसे रैगिंग करने वाले ने सोचा कि मुझे इसके साथ दुर्व्यवहार करना है, वो उसकी चॉइस थी। जिसके साथ रैगिंग हुई, जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके पास भी जिंदगी में दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं और शरीर छोड़ दूं और मैं एस्केप कर जाऊं, और दूसरा व्यक्ति वो भी है कि जो मैं इसका डट के सामना कर सकता हूँ और इसको एक महज एक एक्सपीरियंस लेकर के कि मैं आगे किसी के साथ ऐसा ना होने दूँ और मैं एक अच्छा सीनियर बनूँ, ये भी हमारे सामने चॉइस है।
बिल्कुल।
पर ये चॉइस नेगेटिव या पॉजिटिव हमारी ज़िंदगी में तब आती है, या ये समझ हमारी ज़िंदगी में तब आती है जब मेरी ग्राउंडिंग सॉलिड होगी, जब मेरी खुद की ग्राउंडिंग पॉजिटिव होगी। और उस पॉजिटिविटी के लिए फैमिली का इकट्ठा होना, घर परिवार का इकट्ठा होना, पेरेंट्स को, बच्चों को सक्षम बनाना, अंडरस्टैंड कराना कि बच्चे ये सिचुएशंस हैं।
करेक्ट।
सिचुएशंस लाइफलेस हैं, इनके अंदर लाइफ मत ऐड करो। उसमें हम नेगेटिव कोई भी कदम उठा करके, हम कुछ गलत कदम उठा करके और ख़त्म कर दें ज़िंदगी, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं अपने जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो इन चीज़ों से वाकिफ हैं, जो गुज़रते हैं और जो ऐसी सिचुएशंस पैदा करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी डिसीजंस इंटेलिजेंट डिसीजंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूँ, घर में मैं एक बहुत बड़ी इकाई हूँ और मेरा घर परिवार मेरे अराउंड रिवॉल्व करता है। तो फैमिली ही रुइन हो जाती है, सिर्फ एक बच्चे की जान चली जाने से सिर्फ वो, आई थिंक यू हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, पूरी फैमिली रुल जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस नहीं करनी चाहिए
जी। बिल्कुल। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे तो हम महसूस करेंगे कि उनकी जो अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ उनके अंदर जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा और इससे वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? अगर हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ में उन्हें समझने की कोशिश करें, तो आप महसूस करेंगे कि वो दुनिया में किसी भी चीज़, किसी भी तरीके की समस्या से लड़कर आगे जीत हासिल कर पाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।